समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो करिश्मा, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून इन टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज माय को-होस्ट करिश्मा राय। एंड करिश्मा, लेट मी स्टार्ट विद 3 maxims फॉर लाइफ। फर्स्टली, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। सेकेंडली, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। And lastly, accept that change is natural with grace. Well, listeners, these are the 3 core teachings from the Stoic philosopher Marcus Aurelius and his famous work Meditations. We remember this great Roman emperor and Stoic philosopher who taught us that maintaining inner peace and living a virtuous life was paramount. Today, we celebrate his birth anniversary and we will talk about him in a birth and death section. But first, we begin with the news headlines first.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पक्कम फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर के चालू होने पर परमाणु वैज्ञानिकों की प्रशंसा की। कहा, असैन्य परमाणु कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
इन इस मन की बात प्रोग्राम ऑन आकाशवाणी, प्राइम मिनिस्टर कॉल्स फॉर फुल पब्लिक पार्टिसिपेशन इन ऑन गोइंग सेंसस कैंपेन, एसर्ट्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज कम्प्लीटली सिक्योर।
अमेरिका में एक होटल में गोलीबारी की घटना से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षित निकासी पर प्रधानमंत्री मोदी ने संतोष व्यक्त किया। कहा, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं।
कैंपेनिंग इन फुल स्विंग फॉर द सेकेंड फेज ऑफ वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस ऑन द पेनल्टिमेट डे टुडे।
और गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान जारी।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about PM's Mann Ki Baat. So today, let us set out on a parikrama across the soul of India, where deserts blush pink, forests whisper with life, and distant hills echo with hope, tracing the paths illuminated by the Prime Minister Narendra Modi's words, one inspiring state at a time.
और आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो भारत को प्रकृति के सबसे खूबसूरत रंगों में दिखाती है। और हम अपनी यात्रा की शुरुआत कच्छ के रण के मनमोहक विस्तार से करते हैं। यह नमक, शांति और शानदार अचरजों की धरती है। आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से प्रकृति संरक्षण की कई प्रेरणादायक कहानियां सामने आई हैं।
एंड ही शेयर्ड सम एग्जांपल्स विद द लिसनर्स ऑफ मन की बात टुडे। ही स्पोक अबाउट द रन ऑफ कच्छ वेयर लैक्स ऑफ फ्लेमिंगोस अराइव एवरी ईयर एज सून एज द मॉनसूनस एंड। एंड ही सेड द एंटायर एरिया टर्न्स पिंक एंड देयरफॉर द नेम फ्लेमिंगो सिटी हैज बीन गिवन।
तो बिल्कुल सही, ऐसा ही है कच्छ में। और यह इतना जादुई है कि इस इलाके को प्यार से फ्लेमिंगो सिटी नाम मिला है। जरा कल्पना कीजिए कि पूरा का पूरा नजारा इन खूबसूरत पक्षियों की वजह से गुलाबी रंग में रंगा हुआ है।
And he added that the people of Kutch call them Lakha Ji Ke Barati. He expressed happiness that now Lakha Ji Ke Barati have become beautiful symbol of environmental conservation in Kutch.
हर साल लाखों फ्लेमिंगो यहाँ आते हैं, पूरा इलाका गुलाबी रंग से रंग जाता है, इसलिए इसे फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है। ये पक्षी यही घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। कच्छ के लोग इन्हें लाखा जी के बाराती कहते हैं। अब लाखा जी के बाराती कच्छ में पर्यावरण संरक्षण के बड़े सुंदर प्रतीक बन गए।
वन्य जीवों का जश्न मनाने का कितना कावात्मक तरीका है, यह न केवल देखने का नजारा है बल्कि इस बात का भी प्रतीक है कि समुदाय अपनी प्राकृतिक विरासत को किस तरह अपना रहे हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं। ये बाराती अब केवल आगंतुक ही नहीं रहे, वे क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण का एक जीता जागता प्रतीक बन गए हैं।
सो लिसनर्स, इफ यू हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ अ यूनिक ट्रैवल एक्सपीरियंस, दिस इज योर साइन। पैक योर बैग्स एंड हेड टू द रन ऑफ कच्छ। Witness the flamingos, meet the warm-hearted locals, and be a part of a story where nature and people thrive together.
और मन की बात में साझा की गई प्रेरणादायक कहानियों के सफर को आगे बढ़ाते हुए, यहाँ एक ऐसी कहानी है जो इंसानों और वन्य जीवों के बीच तालमेल को बेहद खूबसूरती से दर्शाती है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साझा की गई यह कहानी हरे भरे और जीवंत तराई क्षेत्र से आती है, एक ऐसा इलाका जो जंगलों, खेतों और वन्य जीवों से समृद्ध है।
एंड नाउ ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन, हर्ड्स ऑफ एलिफेंट्स often wander close to villages here. While it's a magnificent sight, it can also lead to tension and conflict, and that's where a truly inspiring initiative steps in Gajmitra. Imagine this, villagers themselves forming teams to track elephant movements and alert others in time.
और यह सामुदायिक भावना का बेहतरीन उदाहरण है। लोग प्रकृति से संघर्ष करने के बजाय उसके साथ मिलकर रहना सीख रहे हैं। ये प्रयास न केवल इंसानों और हाथियों के बीच के संघर्ष को कम कर रहे हैं बल्कि समुदायों और प्राकृतिक दुनिया के बीच विश्वास भी बढ़ा रहे हैं।
Our journey through stories of hope continues, inspired by Mann Ki Baat. And this time, the Prime Minister brings us uplifting news from the heart of India, Chhattisgarh. Once the graceful black bucks here were disappearing, their numbers declining steadily. But today, there's a change in the wind. Thanks to continuous conservation efforts, these elegant creatures are now making a comeback, seen once again across the open fields.
और वह नजारा कितना शानदार होगा, यह सिर्फ किसी प्रजाति को बचाने की बात नहीं है बल्कि यह संतुलन और गौरव को फिर से बहाल करने की बात है। और उम्मीद यहीं खत्म नहीं होती। आइए अब भारत के रेगिस्तानों की ओर रुख करें और एक दुर्लभ और शानदार पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात करें, जिसे प्यार से गोडावड़ भी कहा जाता है। यह एक ऐसा पक्षी है जो कभी विशाल रेगिस्तान परिदृश्यों का प्रतीक हुआ करता था, लेकिन अफसोस यह विलुप्त होने के बाद बेहद विलुप्त होने के काफी करीब पहुंच गए हैं।
ये पक्षी हमारे रेगिस्तानी इलाकों की पहचान हुआ करती थी, लेकिन एक समय इसकी संख्या बहुत कम रह गई थी। हालत ये थी, ये पक्षी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन अब इसके संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चल रहा है। वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं और अब नए जीवन की शुरुआत दिखाई दे रही है। प्रकृति और मानव अलग नहीं है, हम एक दूसरे के साथी हैं।
And here's another story that blends tradition, innovation and opportunity. Shared by the Prime Minister, this story comes from the vibrant and culturally rich northeast of India, where bamboo is no longer just a plant, but a powerful engine of growth. Yes, it's fascinating, isn't it? There was a time when bamboo was actually treated as a tree under old British laws, making its transport and trade quite difficult.
बिल्कुल सही। और उन कड़े नियमों की वजह से कई लोगों ने बांस पर आधारित उद्योगों में काम करना छोड़ दिया था, लेकिन 2017 में हालात बदल गए जब बांस के पेड़ की श्रेणी से उसे हटा दिया गया, और जिससे इनोवेशन और उद्यम के लिए नए रास्ते खुल गए और आज हम इसके नतीजे देख रहे हैं। त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम जैसे राज्यों में बांस का क्षेत्र पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फल फूल रहा है।
एंड द प्राइम मिनिस्टर आल्सो स्पोक अबाउट द सक्सेस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इन द बैम्बू सेक्टर। ही एलैबोरेटेड दैट व्हाट वाज वंस व्यूड एज अ बर्डन इज नाउ गिविंग न्यू इम्पेटस टू एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड इनोवेशन। Mr. Modi urged people to purchase one bamboo product from the Northeast, saying the efforts will encourage those who toil hard to make bamboo products.
बैम्बू सेक्टर की सफलता की लिस्ट काफी लंबी है. मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट का कोई न कोई बांस का उत्पाद जरूर खरीदें. आप इसे गिफ्ट के रूप में भी दे सकते हैं. आपके इस प्रयास से उन लोगों का हौसला बढ़ेगा जो बैम्बू प्रोडक्ट को बनाने में अपना पसीना बहाते हैं.
और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि ब्राजील में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय चीज प्रतियोगिता में दो भारतीय चीज ब्रांडों को प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं. उन्होंने कहा कि भारत के डेयरी क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आ रहा है और भारतीय चीज विश्व स्तर पर अपनी नई पहचान बना रही है. उन्होंने जम्मू कश्मीर के कालारी चीज का उदाहरण दिया जिसे कश्मीर का मोजरेला कहा जाता है.
And the Gujjar Bakarwal community has been making and eating it for generations. Mr. Modi mentioned Churupi, which is a popular in Sikkim, Arunachal Pradesh and Ladakh. He also spoke about Topli Nu Paneer, also known as Surti cheese in Maharashtra and Gujarat.
आधुनिक तकनीक आ रही है, बेहतर पैकेजिंग हो रही है और हमारे उत्पाद वर्ल्ड स्टैंडर्ड के साथ आगे बढ़ रहे हैं. इसी का परिणाम है कि भारतीय चीज अब देश की सीमाओं से निकलकर दुनिया के बाजारों और रेस्तरां तक पहुंच रही है. आज हम लोकल से ग्लोबल की बात करते हैं, उसमें भारतीय चीज का उदाहरण हमें आगे की दिशा दिखाता है.
प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 20 करोड़ से अधिक अमूल्य दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करके उन्हें सार्वजनिक कर दिया है. श्री मोदी ने श्रोताओं से भारत के इतिहास के अद्भुत अनुभव के लिए अभिलेखपाताल.in पर जाने का आग्रह किया.
7वीं शताब्दी की गिलगित पांडुलिपियां भोजपत्र पर लिखी हुई है. यहाँ आपको 8वीं शताब्दी का एक रोचक ग्रंथ श्री भुवालय भी देखने को मिलेगा. रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े कुछ अहम पत्र भी आप यहाँ देख सकते हैं.
एंड द नेशन विल सेलिब्रेट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर्स बर्थ एनिवर्सरी ऑन द 9th ऑफ मे ऑन द ओकेशन ऑफ पोचिशे बोईशाक. Mr. Modi paid tributes to Gurudev Tagore, saying he was a multifaceted personality who shaped many renowned institutions.
और श्रोताओं, इसी के साथ अपने संबोधन के अंत में श्री मोदी ने बच्चों से आग्रह किया कि वे अपनी गर्मियों की छुट्टियों का भरपूर आनंद लें और कुछ नया सीखने का प्रयास करें. उन्होंने सभी से गर्मियों के मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का भी आग्रह किया. और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
नाउ एज द वर्ल्ड ऑब्जर्व्ड मलेरिया डे यस्टरडे, गोवा सेलिब्रेटेड अ सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ माइलस्टोन बाय एंटरिंग द मलेरिया एलिमिनेशन फेज. विद नो लोकल ट्रांसमिशन रिपोर्टेड इन 3 years, द स्टेट इज नाउ अवेटिंग ऑफिशियल रिकग्निशन ऑफ इट्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स बिकमिंग मलेरिया फ्री. वी हैव मोर फ्रॉम अ कॉरेस्पॉन्डेंट.
Goa has officially transitioned into the malaria elimination stage following 3 consecutive years of reporting 0 indigenous cases. Dr. Kalpana Mahatme, the state program officer, confirmed that the last malaria-related death in the state occurred in 2017. While the state has yet to receive a formal malaria-free tag, officials have already applied for sub-national elimination status for South Goa. Dr. Mahatme told Akashwani that
we want to end malaria. Now we must. All the states are going for malaria elimination, especially Goa for that matter. Goa doesn't have indigenous cases from 2022 onward, indigenous local cases, no deaths from 2018. So Goa has qualified for elimination.
Despite these successes, imported cases remain a challenge due to tourism and migration. To combat this, health centers are intensifying active surveillance and screening under the Public Health Act to identify asymptomatic cases and prevent reinfection. For Parikrama, Mahesh Sopade, Panji.
कहते हैं बदलाव एक कदम से शुरू होता है और इंदौर में इसे सच साबित किया है. यहां एक महिला किसान ने 600 बीघा खेतों में पराली जलाने पर रोक लगवा दी है. प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट.
मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से एक महिला किसान ने पराली जलाने की समस्या के खिलाफ अनोखी मिसाल पेश की है। धुलेट गांव की रहने वाली पपीता रावत ने न सिर्फ खुद पहल की बल्कि पूरे इलाके के किसानों की सोच बदल दी। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर शुरू हुआ उनका सफर आज सैकड़ों किसानों के लिए प्रेरणा बन चुका है। आर्थिक तंगी के बीच सिलाई से शुरुआत करने वाली पपीता रावत ने बाद में लोन लेकर स्ट्रॉरी पर मशीन खरीदी। इसके जरिए उन्होंने किसानों को पराली जलाने के नुकसान और उससे भूसा बनाने के फायदे समझाए। उनकी मेहनत का असर ऐसा हुआ कि इस साल 600 बीघा से ज्यादा खेतों में पराली जलाने से बचा हुआ। अब किसान उस पराली से भूसा बनाकर मवेशियों के चारे के रूप में उसे उपयोग कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार पराली जलाने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति घटती है और हानिकारक गैसें वातावरण में फैलती हैं। लेकिन धुलेट गांव ने इस सोच को बदलने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। पपीता रावत आज किसान दीदी के रूप में जानी जा रही हैं और अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं। परिक्रमा के लिए अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
The world famous Thrissur Puram, often described as a celestial festival of Kerala, has been celebrated at the sacred grounds of Vadak Kunathan temple today. Yes, and we have more from a correspondent.
Grand festival brings together the deities of Thiruvampari temple and Paramekava Bhagavati temple in a spectacular display of tradition, devotion and cultural heritage. The day began with the rhythmic brilliance of Pandimelam, one of the Kerala's most powerful temple percussion ensembles performed by master artist. This will be followed shortly by the iconic Ilanithiramelam, a form of Panjavadyam held under the shade of the Ilani tree within the temple premises, a musical experience considered the pinnacle of orchestral excellence in Kerala. Later in the day, the much-awaited Kudamattam will take place, featuring the vibrant exchange of colourful ornamental umbrellas atop caparisoned elephants, drawing thousands of spectators. However, this year's celebrations are marked by a somber note. Following the recent fireworks shed tragedy associated with Thiruvambadi, in which more than 10 people lost their lives, the festival is being conducted in a subdued manner with reduced grandeur and strict safety measures in place. As the day progresses, the participating deities will ceremonially bid farewell in the evening rituals. The night Puram will conclude with a symbolic fireworks display conducted in a limited and controlled format.
Madurai, the ancient and the grand temple city located in Tamil Nadu, is in full swing celebrating the renowned Chithirai festival with traditional fervor, happiness and gaiety. We have more from a correspondent.
The Grand Meenakshi Amman Temple Chithirai Festival celebrations are in full swing in and around Madurai city. In the historic temple city of Madurai, where every street carries the fragrance of jasmine and every stone echoes devotion, the Grand Chithirai Vizha unfolded like a living epic. Beginning in April 19 this year, the city transformed into a sea of colors, music, lights and faith as lakhs of devotees gathered to witness one of the most Tamil Nadu celebrated festival. The celebrations began with the traditional flag hoisting ceremony at famous Meenakshi Amman temple, marking the start of festivities. The story of Chithirai Vizha is not a festival, it's a divine drama brought to life. It celebrates the celestial wedding of goddess Meenakshi, the warrior queen of Madurai, and Lord Sundareshwarar, an incarnation of Lord Shiva. And prior to the celestial wedding, the coronation of goddess Meenakshi, known as Meenakshi Pattabhishekam, is celebrated this night. Young girls fulfill their oaths dressed as Meenakshi Amman and Andal, while young boys fulfill their oaths dressed as Murugan, Vinayagar, Shiva, Karupanasami and other divine forms are seen wandering in the city, adding grace and fervor to the celebration. The temple streets will be alive with decorated processions, traditional drums, Nadaswara music, flowers, lamps and chants of devotion. The city itself seemed to dance in celebration. One of the most awaited moments of the festival is Meenakshi Thirukalyanam, the sacred wedding ceremony which will be celebrated on April 28th. Devotees watch this with the joy as the divine couple will be ceremonially united, symbolizing love, harmony and prosperity. Families will be thronging at the temple premises to pray for blessings, newlyweds seek happiness and elders viewers will be witnessing tradition passed across generations. Shanti Ramesh for Parikrama from Akashvani, Tiruchirappalli.
और श्रोताओं अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां के हलचल।
In IPL host Chennai Super Kings were 81 for 4 in 14.2 overs against Gujarat Titans at the M.H. Chidambaram Stadium in Chennai when reports last came in.
और अब याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि जयंती या जन्मदिन।
We remember the architect of the independent United State of Orissa, Krishna Chandra Gajapati Narayanan Dev, who was born on the 26th of April, 1892. He was an educationist, freedom fighter, and a social reformer. Krishna Chandra was the king of Paralakimundi estate and the first prime minister of Orissa. The present-day Gajapati district of Odisha, which was earlier a part of the Ganjam district, has been named after.
Krishna Chandra attended the first roundtable conference in London on the 16th of November 1930, wherein he made a fervent appeal for creating a separate province of Odisha on the basis of language and homogeneity. It was due to the efforts of Maharaja Krishna Chandra Gajapati, Utkal Gaurav Madhusudan Das, Utkal Mani Gopal Bandhu Das, Fakir Mohan Senapati and other eminent members of Utkal Sammelani that the separate state of Odisha was formed on the 1st of April 19th.
He also became the first Prime Minister of Odisha from the 1st of April 1937 to the 18th of July 1937. Later on, he became the second Prime Minister of Odisha till 1944. He set up many hospitals, schools, colleges, industrial institutions and modern agricultural farms and provided a record number of 1,281 water tanks in his agriculturally dominant native taluk.
Krishna Chandra Gajapati left for his heavenly abode on the 25th of May 1974. His indomitable spirit of endeavor and perseverance to make Odisha a separate state is unparalleled and will remain as a golden chapter in the history of modern Odisha. We salute the great nationalist.
We also remember Dwarka Dasi, a prominent political worker from Golaghat, Assam. She was 5 months pregnant when arrested for her participation in the non-cooperation movement.
Yes, and a veteran photographer Raghu Rai has passed away today after a 2-year-long battle with cancer. He was 83, born on December 18, 1942. Rai became one of the most respected photographers, not just in India, but across the world. Rai's photography has often been described as a visual record of modern India. He captured powerful images after the Bhopal gas tragedy, one of the worst industrial disasters in history. He received the Padma Shri in 1972 for his powerful photography during the Bangladesh Liberation War. In 1992, he was named Photographer of the Year in the US. In 2019, he won the Academy Day York's Arts Photography Award, one of the top international honors in photography. He was also given a Lifetime Achievement Award in 2017 by the Ministry of Information and Broadcasting.
और इसी के साथ श्रोताओं आज प्रसिद्ध संगीतकार शंकर की पुण्यतिथि है जो मशहूर संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन का अहम हिस्सा थे। शंकर का जन्म 15 अक्टूबर 1922 में हुआ था और बचपन से ही उन्हें संगीत में गहरी रुचि थी। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को विधिवत शिक्षा प्राप्त की और अपनी लगन और प्रतिभा के दम पर उन्होंने फिल्म संगीत की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल किया। जयकिशन के साथ उनकी जोड़ी हिन्दी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सफल जोड़ियों में गिनी जाती थी। शंकर जयकिशन ने 1950 और 1960 के दशक में अपने संगीत से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी रचनाओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य शैली का सुंदर समन्वय देखने को मिलता था। उन्होंने कई चर्चित फिल्मों के लिए संगीत तैयार किए जिसमें आवारा, श्री 420 और संगम जैसी फिल्मों के गीत आज भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है।
या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ घर बार नहीं संसार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं
इसी के साथ अपने उत्कृष्ट संगीत के लिए श्री शंकर को कई फिल्म फेयर पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया.
And Srinivas Ramanujan Iyengar passed away on this day 1920. He was an Indian mathematician who worked during the early 20th century. He made substantial contributions to mathematical analysis, number theory, infinite series and continued fractions, including solutions to mathematical problems then considered unsolvable. In 2011, on the 125th anniversary of his birth, the Indian government declared that 22nd December will be celebrated every year as the National Mathematics Day. And he occupies a special place in popular culture. The Man Who Knew Infinity is a 2015 Hollywood film based on Kanigal's book of the same name. And British actor Dev Patel portrays Ramanujan. Let's listen into a dialogue from the movie The Man Who Knew Infinity.
That has been achieved. All this, mind you, by a man whose limitations of knowledge when I met him were as startling as was its profundity. Opinions may differ as to the importance of Ramanujan's work and the influence it may or may not have on the mathematics of the future. But one gift it does show is its profound and invincible originality. Mr. Littlewood.
और इसके साथ ही श्रोताओं, आज महान फिल्मकार नितिन बोस की जयंती है. नितिन बोस का संबंध एक ऐसे परिवार से था जो कला और फोटोग्राफी के क्षेत्र में सक्रिय था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत छायाकार के रूप में की और बाद में एक सफल निर्देशक और पटकथा लेखक के रूप में अपनी पहचान बताई. नितिन बोस उस दौर के प्रतिष्ठित फिल्म स्टूडियो न्यू थिएटर से जुड़े रहे और कई महत्वपूर्ण फिल्मों का निर्देशन किया. भारतीय सिनेमा में प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत का श्रेय भी नितिन बोस को दिया जाता है, जो फिल्म निर्माण की तकनीक में एक क्रांतिकारी बदलाव था. उन्होंने हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं की फिल्मों में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उनकी प्रमुख फिल्मों में गंगा जमुना विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसे दर्शकों ने काफी सराहा.
नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कतक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाका तो धमक होई बेकरी. नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कतक होई बेकरी, रूप को मन मा बसई बातों बुरा का होई है
रूप को. तो अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए नितिन बोस को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया.
Yes, and like we mentioned in the beginning of our program today, Marcus Aurelius, of course, we are celebrating his birth anniversary today. He was a Roman emperor and a renowned Stoic philosopher, famously known as the last of the five good emperors, and he's most celebrated for his personal journal, now known as the Meditations, which remains one of the most influential works of Western philosophy. And also, Karishma, Shankar Lakshmi Narayanan was born on this day in 1950, better known as L. Shankar. He is an Indian violinist, singer and composer who also goes by the stage name Shankar. Known for his contributions to the world music, he is often regarded as one of the pioneers of East-West fusion, blending the traditions of Indian classical with Western genres such as rock, pop, jazz and electronic music. His extensive body of work spans a wide spectrum of genres, encompassing vocal and instrumental compositions. And let's listen in to his hit 1976 composition, Joy, and it's from his album, Shakti.
और इसके साथ ही श्रोताओं, आज प्रसिद्ध अभिनेत्री और नृत्यांगना मीनू मुमताज की जयंती है. मीनू मुमताज भारतीय सिनेमा की जानी मानी डांसर और सह अभिनेत्री रही. वो मशहूर कॉमेडियन महमूद की बहन थी. मीनू मुमताज ने 1950 और 1960 के दशक में कई फिल्मों में अपने नृत्य और अभिनय से दर्शकों का दिल जीता.
Yes, Rex Vijayan was born on this day 1983. He is a composer, guitarist, singer, record producer and multi-instrumentalist from Kerala. He is best known for being the co-founder and guitarist for the alternative Malayali rock band Avial. Let's listen in to a hit track of his, A Walk to Remember.
Thank you.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है परिक्रमा के संघ को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए करिश्मा राय और अभिषेक मुखोपाध्याय को। नमस्कार, नमस्कार।